निशान आपके पास वो अशार है, दो चार दिन की बात है, निकाल के रखिए, यहाँ पे आ जाए। हाफिज कासिम साहब ने जो इंजीनियर भी हो गए, मश पूरा हो गया तुम्हारा? ए भाई कहाँ गया, हो गया पूरा? माशाल्लाह इंजीनियर हो गए। हाफिज हो इंजीनियर हो और क्या चाहिए, दीन और दुनिया दोनों है। ख्वाजा साहब ने फरमाया था उस जमाने में, आज तो हम जैसों के पास भी अल्लाह ताला ने गाड़ी अता फरमा दी। एक जमाने में मेरे पास 10,000 नहीं थे कि मैं बाइक खरीद सकूं। दीन की बरकत, अल्लाह ताला का फजल व करम, बुजुर्गों की दुआएं और हाजी साहब का सिलसिला, सुभान अल्लाह। हाजी साहब ने फरमाया मैंने अपने सिलसिले वालों के लिए दुआ की कि इनको पैसे की तंगी ना हो। उस जमाने के एतबार से जैसे आज को कम अज कम 50,000 तनख्वाह हो, उस जमाने के लिहाज से इतना यानी इतना रिस्क हो, परेशानी ना हो कि खत्म हो रहा है 20 तारीख को पैसा खत्म हो रहा है क्या करेंगे। आसान रिस्क अता फरमाइए। और हाजी साहब ने फरमाया मेरी ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल भी फरमाई। तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि आज गाड़ी बहुत सौ के पास, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह दाढ़ी वालों को गाड़ी भी अता फरमाई और गाड़ी वालों को दाढ़ी भी अता फरमाई, यानी दीनदारों को दुनिया भी अता फरमाई और दुनियादारों को दीन भी अता फरमाई। बिलफर्ज अगर अगर दीनदारों को दुनिया ना मिली, कभी गाड़ी ना मिली, अपना घर नहीं मिला, तो ये खायब व खासिर नहीं जाएंगे। और अगर दुनियादारों को दीन नहीं मिला तो ये बेचारे खायब व खासिर जाएंगे, जनाजा उठेगा तो क्या लेके जाएंगे। सोचने की बात कि अगर बिलफर्ज कितने हाफिज कारी और कितने उलामा और उसके अलावा भी दीनदार तबलीगी जमात की बरकत से, बुजुर्गों की सोहबतों की बरकत हैं जो कि गरीब हैं, इसी हालत में मर गए तो क्या होगा। जो जहां मुशक्कत सह के जाएगा, हदीस शरीफ में है कि जन्नत का एक चक्कर उसको लगाया जाएगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे जाओ इसको जन्नत की सैर करा के लाओ। फिर उससे पूछा जाएगा तो इतने गरीब थे, इतनी तुमने मुशक्कतें झेली, बहुत मुशक्कत उठाई दुनिया में, मफहूम है हदीस शरीफ का, कहेगा या अल्लाह मैं तो मुशक्कत के नाम से भी बेखबर हूं। जन्नत का एक फेरा लगा के वो मुशक्कतों को भूल जाएगा। और दुनिया का अय्याश तरीन आदमी ऐन गैन, आज के बड़े बड़े लोगों को आप तस्वुर कर लें, सब हर किस्म के, जिनके घोड़े भी जो हैं बादाम खाते हैं, और बड़े बड़े लोग जिनकी जमीनों पर ट्रेनें चलती हैं, अय्याश किस्म के लोग जो अपने लिए किसी का खून करवा देना कोई बड़ा काम नहीं समझते, क्या हो गया, हमारे रास्ते में आता है, जानता नहीं मैं कौन हूं। कल को जब अल्लाह ताला एक जहन्नम का गोता दिलवाएंगे, यहाँ आ जाइए करीब आ जाइए, दूर से आए इनको करीब आने, और करीब आइए, यहाँ जजाकल कस्बा कॉलोनी से आए हैं, कस्बा कॉलोनी से हमारा पुराना रास्ता है, डॉक्टर खलील साहब रहमतुल्लाह ताला वहां होते थे, उनके घर में हमारे महफिल मुशायरा होती थी, जब से हम वहां जाते हैं कस्बा कॉलोनी, कस्बा मोड़ पे उनका घर था करीब में, मुझे अभी तक उनका घर याद है करीब करीब। फिर वहां पे हमारे बहनोई भी रहते थे, फिर हमारे बहनोई जो है वो उनको कैंसर हुआ, 52-53 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, बेहतरीन फिट थे। उससे पहले तक 50 साल तक, यानी जब तक बीमार नहीं हुए थे, क्रिकेट खेलते थे रोजाना शाम में, महल्ले में उनके दोस्त पुराने थे, बाशरा थे लेकिन क्रिकेट खेलते थे। मैंने भी उनके साथ खेला, लेकिन अचानक कैंसर हुआ, और कैंसर और मौत इन दोनों में खास फर्क फासला नहीं, आदमी समझ जाता है जाना है। यही हुआ, आज कब्रस्तान में लेटे हुए, कस्बा कॉलोनी के कब्रस्तान में लेटे हुए। हर आदमी इसीलिए तैयार रहे, वो तो माशाल्लाह नमाजी थे, बेटा उनका आलिम है, बेटे ने जनाजा पढ़ाया, हमारा बेटा भी आलिम हो, जनाजा पढ़ाए और मदरसा संभाल ले तो हमें जाने में क्या परेशानी है, पीछे बाग लगा हुआ है, फल आते रहेंगे इंशाल्लाह। हम भी अपनी औलाद को दीनदार बनाए। अफसोस है कि हमें अपने अपनी फिक्र के साथ औलाद की फिक्र नहीं है, औलाद की भी वैसी फिक्र होनी चाहिए। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने अहल आयाल को दोजख की आग से बचाओ। तो बहरहाल बात कहीं निकल जाएगी, कस्बा कॉलोनी में हमारा जाना इसलिए ज्यादा होता कि हमारी बहन भी वहां रहती थी, अब उन्होंने भी इलाका छोड़ दिया, हमारे इलाके में बहुत ज्यादा अजीब हालात हो गए, और इश्तियाक भाई कब्रिस्तान चले गए, हमारे बहनोई थे। और मैंने उनको एक दफा कहा, मैंने फला से मैं जो मेरी राबता था ना, मैं जाना वाना कम कर दिया, इनकी बातें ऐसी मुझे अभी भी याद आते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जब माचिस जल जाती है तो तीली को फेंक दिया जाता है। ओ, मुझे ऐसी जाके लगी कैसे वक्त से बात की, बिल्कुल ऐसे सरसरी अंदाज में कहा, कोई जैसे कोई मुझे मुखातब भी नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत चोट लगी, वाकई मैंने गलत किया, मैंने गलत किया कि मैंने उनसे ताल्लुक तोड़ दिया। जब यानी जरूरत थी तब तो जाते थे, अब जरूरत खत्म हो गई शादी के बाद, तो अब जाना कम कर दिया। तो ये बात तो ऐसी बात बातें उनके तजर्बे, इसीलिए कहते हैं खालितुल जालिसुल कुबरा साइलुल उलामा। हजरत वाला यदि शरीफ नकल करते थे साइलुल उलामा, उलामा के साइल बन जाओ, सवाल पूछो। साइल कैसा होता है, क्यों पूछता है ये क्या कह दिया आपने मौलाना, साहिल का मतलब मांगता है अल्लाह के नाम पे दे दो। सवाल 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 की तरह करे, शागिर्द की तरह करे, अकड़ के ना करे कि ये आपने कहां से कह दिया मौलाना, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं। आप सब पढ़े लिखे हैं तो बैठे क्यों हमारे पास, इतने पढ़े लिखे हो तो आप खुद भी बल्लिग होते। साहिल उलमा के साहिल बन जाओ, यानी कोई बात समझ में ना आए तो बाद में पूछ लो, अगर मजमे में कोई ऐसी बात है तो पर्चा दे दो, वो मुनासिब समझेंगे तो बता देंगे, नहीं तो बताएं बाद में मिल लें। ये मजमे में खड़े होके और सारा वो खराब करना माहौल, ये ठीक नहीं। साइल हजरत ने फरमाया मुअतरिजुल उलमा मत बनो, साइलुल उलमा। ये जो सवाल एतराज के, तो ये सवाल नहीं एतराज है। और सवाल वो होता है भाई, मैं आपने जज़ाकअल्लाह आपने तवज्जो दिलाई, मेरी समझ में मसला नहीं आया, जरा मुझे समझा दीजिए, कज़ाए उम्री कैसे पढ़ते हैं, फलाना काम कैसे करते हैं, हमें बता दीजिए। पुराने पुराने तायब हैं, तायब जौनपुरी नहीं बल्कि तायब का मतलब तौबा करने वाला, अत्तायबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं, अगर उसने दूसरों का हक नहीं दिया है और कज़ाए उम्री नमाजें नहीं पढ़ रहा है और तजवीद दुरुस्त करने की फिक्र नहीं है, तो ये महबूब नहीं बन सकता अल्लाह। तौबा तायब उसको कहते हैं जो अपनी शरायत के साथ तौबा करे, तायब उसको कहते हैं। हर चीज का इंजीनियर वो है जिसने चार साल लगाए, तीन साल में छोड़ देते, इतनी डिग्री नहीं मिलती। हमारे दोस्त ने, दो दोस्त ऐसे हमारे जानने में जिन्होंने तीन साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, डॉक्टर नहीं है, वो खुद भी कहते हैं कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, और इधर आके बैठो मियां, देर से आते हो उधर छुप के बैठ जाते हो, एक दिन छुट्टी होती है असर के बाद नहीं आ सकते, पूरा बचा हुआ वक्त देना निचोड़ के, जो असर मगरिब से इशा तक हो, फिर फौरन घर भाग जाना अहलिया की आगोश में, आगोश अहलिया में क्या क्या। मैंने एक जगह अर्ज किया है साख समझते हैं, हमारा बयान ऐसी होता है भाई, कोई तरतीब चलना जरूरी नहीं है, इसको समझ में आए बैठे, ना समझ में आए ना बैठे। हजरत वाला फरमाते जिसको ये पसंद हो बैठे, जिसको जो मिजाज पसंद हो रोने वाला को वहां चला जाए, हमारे मिजाज में तो हंसना आसाना है, और कभी हंसना आसाना भी है, कभी जलाल भी है, कभी जमाल भी है। कई बुजुर्गों की सोहबतों का ये मुरक्का हो जाता है, ये जमाल हजरत वाला के आया, वरना मुफ्ती साहब का जो जलाल था ना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और शायद मैं तब तक जिंदा भी ना होता, शहीद हो जाता अगर मैं मुफ्ती साहब का मुरीद होता तो, वो क्योंकि वो ऐसी जलाली थे कि हाँ क्या कर रहे हो, जाओ उधर, कहाँ जाना था पता है ना, कहाँ जा, कितने शहीद हो गए, हम भी हो जाते। हजरत वाला ने हयात और खालिक हयात पे फिदा करना सिखाया, और मुफ्ती साहब जब हजरत वाला जा रहे थे, मुफ्ती साहब ने हजरत वाला से कहा कि आप वहां आगे मत जाइएगा, आपका काम यहां से कुमक भेजना है, आपको खुद आगे जाने की जरूरत नहीं है। जनाब ये भी जरूरी है, कुमक के लिए पीछे लोग होने चाहिए। हजरत अली को आपने पीछे का मुकर्रर किया रज़ी अल्लाह ताला ग़ज़वे तबूक वगैरह किसी में, और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, गमगीन थे जाहिर सी बात, हर आदमी जाता ये नहीं खुश, चलो बच गए जिहाद से, सहाबा के शौक, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं तुम नहीं चाहते जैसे हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे अपना नायब बना के, मैं तुम्हें छोड़ के जा, खुश हो गए। तो पीछे भी तो रहने चाहिए लोग, पीछे नहीं रहेंगे तो आगे कुमक कहां से जाएगी। तो बंदे ने अर्ज किया कि फुस्साक समझते हैं गुनाहों में मजा है, फुस्साक समझते हैं गुनाहों में मजा है, उस शाक का इरशाद है आहों में मजा है। मोबाइल की गंदगी में कहां कहां लगे हैं, जिक्र का मौका नहीं मिल रहा है, मोबाइल में घुसे में इतनी देर तक। आपने सुनाया था किसने, निशान लतीफा किसी और ने सुनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी बीना को पता चले कोई बीना है और वो चलते चलते गटर में गिर गया तो क्या वजह हो सकती है, उसके हाथ में मोबाइल है, ये वजह, मोबाइल में इतना मुनमी के देखता, देखा ही नहीं रास्ता, गटर में गिर गया, इतना इन्हमाक है मोबाइल में। कई कई घंटे लगे रहते हैं लोग लैपटॉप पे और फेसबुक में, कई कई घंटे, मैं भी करता हूँ, यानी कि काम लैपटॉप पे, अल्लाह का शुक्र है शेर व शायरी हो गया खत्म, नहीं तो कुछ कोई मजमून लिखना होता है, कितनी जगह की फरमाइशें होती हैं, बाद दफा मुझे बैठना पड़ता। लेकिन आदमी बैठे तो ये सोच के बैठे कि मुझे अल्लाह की नाफरमानी से बचना है, वरना फेसबुक पे बैठे, यहाँ नमाज पढ़ने वाला लड़का अब वो बहुत कम कम आता है, बहुत कंप्यूटर में माहिर हो गया, माहिर होते होते ऐसा हो गया कि नमाजें भी छूट गई, रात दो दो तीन तीन बजे तक बैठा रहता था। उसके भाई से मैंने पूछा, आजकल तुम्हारा भाई नजर नहीं आता, कहने हाँ दो तीन बजे तक तो लैपटॉप पे बैठा रहता है, आपको पता है क्या होता है लैपटॉप पे, खुद कह रहा है उसका भाई, नमाजें छोड़ दी उसने, अब जुमे में आता है सिर्फ, ईद और जुमे में नजर आता है, सिर्फ थोड़ा पीछे नहीं जाता, इतना पीछे जाता है जहां से वो चला था, चला था, दाढ़ी भी अभी तक दाढ़ी है उसकी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। वजह क्या है? लैपटॉप और मोबाइल की गंदगी, फेसबुक की गंदगी। तो जिक्र का मौका नहीं मिलता, तिलावत 24 घंटे गुजर जाते हैं, मुसलमान एक पारा तिलावत नहीं करता। एक पारा तिलावत, हजरत ने 100 जिक्र के साथ एक पारा तिलावत, 100 जिक्र में तो 15 मिनट लगते हैं तीनों में, ज्यादा 20 मिनट, एक पारा तिलावत में आधा घंटा लगता है, आम आदमी पढ़े, हाफिज 15-20 मिनट में पढ़ लेता है एक पारा। तो फिर ये भी फरमाते थे, एक पारा ना कर सको तो आधा पारा कर लो, किसी दिन और भी काम ज्यादा है पाओ पारा कर लो, नागा ना करो। हम कितने दिन में पढ़ते हैं कुरान? खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, कोई मर जाता है फिर कुरान निकाला है। हाँ, अब तो इसाले सवाब के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर वहां पे बताशे मिलेंगे और मिठाई मिलेगी इसलिए पढ़ रहे हैं, खाना मिलेगा, कड़वी रोटी मिलेगी, कहाँ कुरान पढ़ा जब मैयत हो गई। शादी के घर में कोई कुरान नहीं पढ़ता, आपने देखा शादी के घर में कुरान पढ़ते हो, गाना बजते हुए सुनेंगे आप, नमाजें छोड़ देते हैं, दूल्हा दुल्हन नहीं उसके साथ वाले भी, इतना इतना काम है शादी का घर है, नमाज कैसे पढ़े? नमाज शादी में नमाज माफ हो जाती, और मैयत में सब हर एक को आता है। फजर में मैंने दो लड़कों को देखा, मैं समझ गया कोई एबनॉर्मलिटी है, पता था कि अब्बा भी बीमार है, मैं समझ गया हो गया काम। मिला तो वो भी ऐसी तरह मिले, ऐसे मौके पर आदमी का दिल रकीक होता, अब्बा का इंतकाल हो गया, अच्छा भाई जनाजा पढ़ाएंगे, तो क्यों आए? वरना पूरे साल नहीं आते, सिवाय रमजान में कुछ कभी आ जाते, पूरे साल नहीं आते, क्यों आए? कि अब्बा का इंतकाल हो गया, फजर में आ गए। यानी गमी से हम आते हैं दीन की तरफ, खुशी से नहीं आ सकते, यानी हम खुशी के लायक नहीं है, खुशी हमें रास नहीं आती। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, है ना, बात कड़वी है, लेकिन हक उमरन, हक कड़वा होता है। आपने फरमाया था अपने सहाबी अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ग़फ़ार कबीला है, ग़फ़ारी नहीं है, ग़फ़ार कबीला, ग़फ़ार के थे ये अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया था वक़ुलिल हक़, सात बातें जो इरशाद फरमाते, एक ये भी वक़ुलिल हक, हक बात कहना, व इन काना मुर्रन, अगरचे कड़वी हो, इनका ना मुर्रन, अगरचे कड़वी हो लेकिन हक बात कहना। अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब दिल है दिल में जाके उनके अटकती भी है। बकौल एक साहब ने हजरत वाला से कहा कि क्या बात है, आपकी बात हमारे दिल में जाके फौरन अटैक करती, स्ट्राइक करती है, दोनों लफ्ज अंग्रेजी के। हजरत ने फरमाया कि जब तक मिस्टर अंग्रेजी ना बोले उसकी बोले ना, उसका खाना हजम नहीं होता, मिस्टर को टर की जरूरत होती है, मिस्टर को टर की जरूरत होती है। अब सुनिए हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह ताला के मलफूजात में, हजरत थानवी के आप मलफूजात पढ़ें, काश के उस ज़ौक तक हम पहुंचे, अभी तो हजरत की किताबें पढ़ने का टाइम नहीं। जब तक हजरत को नहीं पढ़ेंगे, मुफ्ती तकी साहब की इस्लाही खुतबात नहीं पढ़ेंगे, हजरत थानवी की बातें समझ में नहीं आई, फिर आप कहेंगे पढ़ते थे समझ में कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आया था? क्योंकि हमने जब हम तीसरी चौथी नहीं पढ़ेंगे तो मैट्रिक कहां से समझ में आएगी, और मैट्रिक नहीं करेंगे तो मास्टर्स कहां से समझ में आएगी। सही से बैठो, आलती पालती मार के, पीछे वाले भी नजर आए। तो हकीम मुलम्मद के आप अल्फुजात पढ़ें, हर दूसरे सफ़े पे कोई ना कोई लतीफा, कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि आप अकेले में भी हंसने लगेंगे। अब मैं बैठता हूँ और मुताला करने तो नींद उड़ जाती है, मुताला इसलिए करते कि नींद आए, हकीम मुलम्मद का मुताला करो तो नींद उड़ जाती है। बात बातें ऐसी, आदमी अश अश करता रह जाता। मैंने उलमा बयान किया, उलमा अश अश कर, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है जाके आप कूला कौलुल लयीना, जाके उससे नरम बात कीजिएगा फिरौन से। फिरौन कितना बड़ा जालिम, कितना बड़ा जाबिर, खुदाई का दावा करने वाला, रब्बुकुम अला, क्या कह रहा है, मैं रब हूं पालने वाला, उससे कहा जा रहा है खुलू खौल खुला लहू खौल कौल लयीना, आप जाके उससे नरम, लाल लहू ये तदक कराऊ यक्षा, शायद कि वो आपकी बात सुने और डरे अल्लाह से।
اور نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار واغلظ علیہم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. مفتی صاحب بھی اسے پڑھتے تھے آیت کو جلالی انداز، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ ان پر سختی کیجیے. واغلظ کا کیا مطلب؟ مغلظ ہوتا نا، مغلظ ایک دوا بھی ہوتی ہے سختی کے لیے، مغلظ. واغلظ علیہم، واغلظ علیہم، آپ ان پہ سختی کیجیے، گردنیں ماریے. دوسری جگہ فرمایا یہ کیوں ہے؟ ان کو کہا جا رہا نرمی سے بات کریں، وہ جلالی ہیں اور نبی علیہ السلام جمالی ہیں، کہا جا رہا آپ سختی کیجیے ان سے. طبیعت کا مزاج یہ حکیم الامت کے، دیکھیے تحقیقات، آدمی آشش نہیں کرے گا پڑھنے پہ. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ ایک گاؤں میں حکیم الامت کے لطائف میں سے پسندیدہ لطائف بھی حکیم الامت کے چھپے ہوئے ہیں، میں نے دو تین دفعہ لیا ہے، پھر کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے، کیونکہ کام بات ایسی ہے، چیز ایسی. تو اس میں ہے کہ وہ گاؤں میں گورنر آتا تھا، نہیں ایک گورنر آیا، گورنر تو ایک دیہاتی بہت دور سے آیا اس سے ملنے کے لیے. آج کوئی پہلی دفعہ گورنر آیا ہے، نر کا بچہ، ورنہ جو پہلے آتا تھا سب ٹر ہوتا، منسٹر، ڈاکٹر، ڈپٹی کلیکٹر، سارے ٹر ہوتے، مسٹر. آج کوئی نر کا بچہ آیا، میں اس لیے تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، گورنر، یہ نر کا بچہ ہے، تمہیں اس لیے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حکیم الامت کے ملفوظات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ نیند اڑ جائے، لیکن پڑھنے کے لیے اردو کا ذوق بلند کرنا پڑے گا، اور پڑھنے کے پہلے حضرت والا کو پڑھنا پڑے گا. حضرت کے ملفوظات آپ کتابیں روزانہ پڑھیں. پتہ نہیں ہمارے دوست کتنا پڑھتے ہیں، بتاتے بھی نہیں، حالات میں بتانا چاہیے. کم از کم تین صفحے ہر حضرت کا مرید اور سلسلے کا، تین صفحے پڑھیں. تین صفحے کتنا؟ تین گھنٹے لگیں، پانچ سات منٹ لگیں گے، معمول کے پتا. ارے وہ فل کتاب نہیں تھی، دوسری کتاب تھی، وہ ایک کتاب ہے، آپ یہاں سے لے جائیے، مفت میں تقسیم ہوتی ہے، بیچ تھوڑی رہے ہیں. تو حدیث شریف سنا رہا تھا، پھر وہ میں اس کی طرف آؤں گا جو شعر سنا رہا ہوں، شعر بعد میں کہوں تاکہ حدیث شریف مکمل ہو جائے. الحمدللہ. جب دنیا کے عیاش ترین آدمی کو، کیسے کیسے لوگ ہیں ہر آدمی جانتا، فلاں نواب گزرا اتنا عیاش تھا، فلاں ابھی بھی ایسے ایسے لوگ، اللہم احفظنا منہ، شادی کے باوجود منہ کالا کر رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، شادی کے باوجود غیر محرموں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، شادی اور داڑھی کے ساتھ. خطوط آتے ہیں میرے پاس اور حالات آتے ہیں میرے پاس، اور ایک ایک موبائل پر آٹھ آٹھ لڑکیوں کی تصویریں، ماں نمبر، ماں تصویر موبائل پہ. یہ موبائل کے فضائل میں سے، ہماری گھروں کی غیرتیں دوسروں کے ہاتھ میں، اللہم احفظنا من. تو عیاشی، اس کو عیاشی کہتے ہیں نا، محبت اس کو کہتے ہیں، آج کل اس کو بھی محبت کہتے ہیں. نہیں، ایک سے کرو تو محبت ہے، دس سے کرو تو عیاشی ہے، یہ بھی غلط. نامحرم سے محبت کرنا جائز نہیں ہے، بیوی بن جائے پھر محبت، جب بیوی بن جاتی ہے تو سر کا درد بن جاتی، جب تک محبوب رہتا ہے تو اس سے محبت کرتا. کل تلک جو اس کا دیوانہ تھا بیگانہ ہے. بات یہ ہے پہلے محبوبہ تھی، اب بیوی ہے وہ، اب بیوی کے بعد جو سر میں درد ہوتا ہے، اور محبوبہ سے رات بھر لگے ہوئے ہیں، دو دو تین تین گھنٹے لگے ہوئے ہیں، اس سے جوانی بھی ضائع ہوتی ہے. یاد رکھیں، جو غیر محرم سے باتیں کرتا ہے اس کی جوانی محفوظ نہیں رہے گی، اور اکثر منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست کیا ہوا، دو سال تک باتیں کرتے رہے، دو سال بعد کوئی بات ایسی ہوئی کہ اس نے ویسی بات کیوں کہ منگنی ٹوٹ گئی. اب اور باتیں کرو، جتنا آپ کریں گے اتنا زیادہ منگنی کے بعد بات، نکاح کے بعد بات کرنا جائز. تو بتا رہا ہوں آج کل عیاشی عام ہے، یہ چھوٹے درجے کی عیاشی ہے، اور بڑے درجے کی ہے، بڑے درجے کی سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، اللہم احفظنا منہ. تو بڑے درجے کے عیاش کو جب بلایا جائے گا، اور پھر جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، جنت کی سیر اور جہنم کا غوطہ، فرشتے اس کو جہنم دکھا کے لائیں گے. صرف اس سے پوچھا جائے گا، تم نے بہت مزے کیے دنیا میں، بہت عیش و عشرت میں؟ نہیں یا اللہ، میں تو مزے اور عیش کے نام سے بھی بے خبر ہوں. ایک جہنم کا غوطہ نانی یاد دلا دے گا، ناک کے راستے سے ساری عیاشی نکل جائے. اس لیے میرے بھائی، یہ سب حالات وقتی ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں. حضرت پھولپوری لالو کھیت کی بستی سے گزر رہے تھے، یہ بھی لالو کھیت کو فضیلت حاصل ہے کہ حضرت پھولپوری وہاں سے گزرے. جعفر صاحب، آپ نے لالو کھیت چھوڑ دیا، صحیح نہیں کیا، لیاقت آباد ہے وہ، لیاقت آباد. وہاں سے حضرت والا نے فرمایا، وہاں سے حضرت گزر رہے تھے، کیونکہ ناظم آباد میں رہتے تھے، جہاں حضرت والا پہلے حضرت گھر تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رہتے تھے. तो वहां पे हजरत वाला रहते, वहां गुजर रहे थे, गाड़ी पे होंगे, बीमार थे। फरमाया देखो, हजरत से फरमाया मौला की अख्तर, ये जुग्गियां हैं, खाना बदोश वगैरह होते थे, ये जुग्गियां हैं, इनकी भी सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, बंगले वालों की भी होती है सुबह शाम, और कब्र में जाके सब बराबर हो जाएंगे, वहां पता चलेगा कौन मजे से है, कौन कौन सजा में है, कौन मजे में। इसलिए ये सब जिंदगी गुजर जाती है जैसे तैसे भी, उनकी भी गुजर जाती, गरीब की बगैर बिजली क्या, बताइए कितने घरों में यूपीएस नहीं, रात में 1 बजे बिजली आती है हमारे, जो 11:30 बजे जाती है तो 1 बजे आती है, कितने घरों में बिजली। हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन की बरकत से जनरेटर दिया हुआ, कितने घर छोटे भी हैं, हवा भी नहीं है उसमें। मैं इसलिए दुआ करता हूँ अल्लाह नेक साले क़यादत अता फरमाई, ये मत समझे, मैं ये इसलिए नेक अच्छे मौसम की इसलिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जनरेटर भी है और भी सामान है, लेकिन गरीबों का क्या होगा। अल्लाह मौसम को खुशगवार फरमा दीजिए ताकि बिजली का एहतियाज ही ना रहे, आती है आए जाती है जाए, मौसम अच्छा है आजकल, जैसे आदमी सो रहा है बगैर जो पंखे के भी सो रहा है लेकिन बहरहाल गुजर ही जाती है जैसे थे। ये तो 50-60 साल पहले बिजली हमारे यहां आई है, 100 साल पहले कहां थी बिजली, हिंदुस्तान में तो नहीं थी ना, कैसे गुजारा होता था। अब हम सब बिजली से चलने लगे, मोबाइल की चार्जिंग नहीं है तो परेशान हो जाता है, चार्जिंग हर आदमी चार्जर, तुम्हारे पास चार्जर है उससे परेशान हो रहा, तो उस जमाने में थी ये परेशानियां। हालांकि जिंदगी तेज हो गई, आसान हो गई, लेकिन हमने क्या किया, सुनिए शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मुफ्ती तकी साहब इस्लाही खुतबात में, 25 जिल्दें मैंने यहां सुनाई असर के बाद, पूछिए लोगों को कितना फायदा हुआ। इतनी आसान उर्दू है अदब मुफ्ती तकी साहब की, और जान के, क्योंकि पता है कि लोग जानते नहीं, पहला मजमुआ उन्होंने निकाला ना अपना वो सफरनामा, उसका नाम था जहाने दीदा, जहाने दीदा। तो किसी ने कह दिया, किसी एक दो ने, कि आपका आपकी जहां दीदा हमने पढ़ी, बहुत अच्छा आपके जहां दीदा, जहाने दीदा का मतलब अलग है, जहां दीदा का मतलब है। उन्होंने दूसरे उसमें नाम ही बदल दिया कि ये लोग नाम नहीं समझते, क्या काम समझेंगे, दुनिया मेरे आगे कर दे। तो फरमाते हैं मुफ्ती साहब अपने इस्लाही खुतबात, बयानात हैं, बयानात छपे हुए, एक जमाना था सुबह नाश्ता करना है, उसके लिए लकड़ी ला रहे जा रहे हैं, लकड़हारा साहब लकड़ी काट के दे रहे हैं, वो ला रहे हैं, बिकती भी थी, खुद से ले आता, उससे पहले जमाने में खुद से ले आते थे काट, बाद में फिर स्टाल होता था उस पर लकड़ी बिकती थी, उससे लेके आते थे, वो लकड़ी लाएंगे, फिर छोटी छोटी लकड़ियां बीवी साहबा या अम्मा जान उसमें धोकेंगी, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता आग जलेगी, फूकनी से फूका जाएगा, यानी 1.5-2 घंटे की तो ये सुबह की कहानी थी। फिर जाके नाश्ता तैयार होगा, चाय में भी वक्त ले, ये जो बच गया, अब फरमाया अब देखो, अब गैस का चूल्हा है, यूं कान मरोड़ा उसका और आग निकल गई, ऑटोमेटिक भी है, यूं आग खुद ब खुद निकल गई, माचिस जलाने की भी जरूरत नहीं। ये जो वक्त 1.5-2 घंटे बचा ये कहां गया, ये टीवी में और मोबाइल में खगारत हो गया। मशीन कपड़े हाथ से धोती थी अक्सर औरतें, हमारी अम्मा भी मुझे याद है, लेकिन अब सब मशीन भी है और मासी भी है, मशीन भी लगाने के लिए मासी है, फिर भी हमारी औरतें थक जाती हैं। सुभान अल्लाह, शायर ऐसे ही मौके पे कहता है, केले खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, केले खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पांव छिले जाते हैं, फर्श मखमल पे कालीन पे चलता हूं मेरे पांव छिले जाते हैं, और देख केले खाने हम इतने नाजुक हो गए। बता रहे ये वक्त कहां जा रहा है, वक्त की हम कदर नहीं कर रहे हैं, एक कल आने वाली है जिसके बाद परसों नहीं आएगी, कुछ मालूम नहीं है कि कल हम कहां होंगे, आज यहां है कल कहां होंगे। रोजाना रात हमारी बेड पे गुजरती है, एक रात कब्र में गुजरेगी। अमीर तरीन लोगों को जब दफनाया जाता है, कौन सा फॉर्म रखा जाता है, मोल्टी फॉर्म या दूसरा कोई, कितने फॉर्म है, कोई फॉर्म रखा जाता है, मिट्टी में दफनाया जाता है, मिट्टी में दफनाया जाएगा, फिर उसके बाद वहां जो होगा सब जानते है, यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत, एक दिन मरना है आखिर मौत। तो फुस्साक समझते हैं, फुस्साक कौन है, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को फुस्साक फासिक कहते हैं, और जिसने भी जितने भी गुनाह किए हैं पूरी जिम्मेदारी से, तमाम उलमा की सोहबत और बुजुर्गान दीन की सोहबतों का हासिल ये निचोड़ बता रहा हूं, जितने भी जिससे गुनाह हुए हैं हजारों की तादाद में, अभी तौबा कर ले आंदा, या अल्लाह मुझे माफ कर दी, आइंदा आपको मैं नाराज नहीं करूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, आइंदा मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, अभी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और हम तायब अत्तायब व हबीबुल्लाह में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह का महबूब बन गया, आइंदा दाढ़ी नहीं कटाऊंगा इंशाअल्लाह, आइंदा बदनिगाही नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। हो जाएगी ना, हो जाएगी, फिर तौबा कर लेंगे। तीन दिन बाद, तीन दिन तक तो तौबा रही, तीन दिन तक इंशाअल्लाह वलीउल्लाह रहेंगे। जितनी देर के लिए गुनाह होगा इतनी देर आदमी फासिक हो जाएगा, फिर तौबा कर ले फिर से वलीउल्लाह हो जाएगा। तो आदमी कोशिश तो करे, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर तीन महीने बाद गुनाह होगा, फिर और महीने बढ़ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा वक्त आए कि जब गुनाह छूट जाए बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला की सोहबतों से कैसे कैसे नौजवान तैयार हुए हर गुनाह से मुज्तनिब। हजरत ने खिलाफत दे दी, लोग इतने जवानों को खिलाफत दे दी, बहुत जल्दी खिलाफत देते हैं। अरे मियां ये इस उम्र में भाभी से पर्दा कर रहा है, शादी हो गई साली से पर्दा कर रहा है, ये कहीं गैर शरई तकरीब में शिरकत नहीं करता, हर काम सुन्नत और तकवा के मुताबिक करता है, अगर ये इसको खिलाफत दे दी तो क्या गलत किया। किसको खिलाफत दें, बुढ़ा होना जरूरी है, बुढ़ा होना जरूरी है खिलाफत के लिए, मियार क्या होना, बूढ़ा होना चाहिए। हजरत थानवी ने 22 साल की उम्र में हजरत हरदोई को खिलाफत दी, 22 साल की क्या उम्र होती, 22 साल का जवान, लेकिन वो कैसे थे हजरत थानवी, जानते थे अल्लाह वालों के, अल्लाह वाले जानते, 22 साल की उम्र में खिलाफत दी, उनको भी डांट पड़ी और इतना डांटा हजरत थानवी ने, इतना डांटा कि अब्बा भी रोने लगे, उनके अब्बा वकील थे वो भी रोने लगे। फिर दोनों घर चले गए, फिर पीछे से खिलाफतनामा भेज दिया, मैंने आपको इजाजत मौलाना फराह साहब, पहले रगड़ाई की धुलाई की, पहले ऑपरेशन किया, फिर मरहम भी रख दिया। एक और साहब आए, ख्याल हजरत के वाला के बयान में चल रहा था, ये बयान मैंने ग्रुप पे चला दिया, ग्रुप पे चलाया, ये बयान सुने, खास उसमें ले तो अजीब और गरीब बयान, इसमें ऐसी बात है जो मैंने कल पहली दफा सुनी। बस हजरत किसी लिए बयान तुम यहाँ लगा दो, कोई ऐसी बात आती जो सुना ही नहीं हमने, हर बयान थोड़ी सुना, कोई बांग्लादेश में हो रहा है, कोई अफ्रीका में, हर बयान यहाँ हर बयान चलता है। और मैं साथियों से कहता हूँ ऐसे बयान लगाया करो जो अजीब और गरीब, सुनो फिर लगाओ उसको। तो फरमाया एक साहब आए और वो हजरत की मुलम्मत के पास बैठे, जवान थे वो, हकी मुलम्मत के पास बैठे 20-22 साल के जवान, हकी मुलम्मत उनको देख के खड़े हो गए, उनसे मुआनका किया। 20-22 साल के जवाब के लिए, जवान के लिए कभी खड़े नहीं होते थे, हजरत फूलपुरी के लिए खड़े होते थे। हजरत फूलपुरी हकी मुलम्मत से 7 साल छोटे थे और उस हजरत का मकाम ऐसा था कि खुद हजरत को लिखा था कि मैं जब दुनिया की जमीन पर चलता हूं तो ऐसा लगता है कि आखिरत की जमीन पर चल रहा हूं, इस मकाम के आदमी थे। हजरत थानवी खड़े होते थे और मुआनका करते थे, और जब हजरत फूलपुरी लिखते थे बंदा आने की इजाजत चाहता है, फरमाते थे इजाजत चे मानी मुश्ताक, बंदा आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। ये है शेख भी, क्योंकि साहेब हाल थे ना, साहेब हाल थे, अल्लाह वाले थे। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला जिनसे बैत हुए हूं, कोई आम आदमी होगा वो तो। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदमी आया जब जवान, अल्हम्दुलिल्लाह हकीम उल उम्मत खड़े हो गए, खड़े होके मुआनका किया, लोग देख रहे हैं ये तमाशा। फिर उसको बिठाया अपनी बराबर की जगह में और फिर उसको कुछ बात की, कुछ बात की कान में, उन्होंने भी थानवी ने भी उनको कान में बताया, राजदाराना खुफिया बातें हुई, चंद मिनट में उठ के चले गए। तो लोगों ने, ये लोग हैदरा ज्यादा थे, हजरत थानवी जल्दी थोड़ी पसीजते थे कि इतना मुस्तकबाल, तो देखा है कौन था, उन्हीं से पूछ लेंगे कौन है, अभी हजरत से पूछना तो आसान नहीं है। जब पीछे गए तो नजर ही नहीं आए कहीं पे, अब आगे हजरत कौन थे वो, खादिम खास थे, उन्होंने पूछा हजरत कौन थे वो, अभी हर बात नहीं पूछा करो भाई। फिर उन्होंने जब ज्यादा कहा और अहले मोहब्बत ने ख्वाजा साहब वगैरह होंगे कहा, भाई वो अब्दाल था, वो मुझसे मिलने आया था, कुछ बातें पूछ रहा था, चला गया वो। अब्दाल को जाते हुए कोई गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं होती, एक कदम यहाँ रखता है दूसरा शाम में, एक शाम में एक मदीने में, अब्दाल था वो अपने वक्त। तो किससे आएगा मिलने के लिए, जो मुझसे मिलने आया वो तो अब्दाल का सरदार होगा ना, उससे मिलने आया होगा, पूछने किससे आया, हकीम उल उम्मत का मर्तबा भी इससे पता चलता है। इसी तरह एक और आदमी आया और आके वो अच्छी उम्र के थे और चंद दिन रहे वो, एक हफ्ते में हकीम उल उम्मत ने उनको खिलाफत दे दी, 22 साल में और एक हफ्ते में ये खिलाफतें नहीं दी जाती थी, वहां बहुत अगड़ाई होती थी, एक हफ्ते में खिलाफ लोगों ने, अरे हजरत क्या आप क्या बात क्या देखा आपने, फरमाया अरे भाई लोगों के तो हालात का और उनके गुनाहों का की आदात का इमाला होता है, इनका इजाला हो गया। इमाला होता है तो क्या हमारा मुड़ जाता है, हिमाला मुड़ जाता है, यानी वो जो गुस्सा पहले बीवी पे आता था, बच्चों पे आता था, झुंझुलाहट पे आता था, फकर फाका पे आता था, गालियां दे, वो अब गुस्सा दीन के लिए आता है, इसको हिमाला कहते हैं, और इनका इजाला हो गया, अब गुस्सा ही खत्म और हर बुराई खत्म हो गई इनमें से। फिर खुद बताया कि इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक अब्दाल ने तुम्हारे पास भेजा है, वो जंगल में मिल गया था, जंगल में उन्होंने बताया कि मैं गाय भैंस चराते थे, वो आ गए अब्दाल साहब, उनको भूख लगी थी, अब्दाल को भी भूख लगती है, ऐसा नहीं कि उनके भूख नहीं लगती, ने कहा भाई मुझे कोई दूध पिला दोगे, उसने फौरन दूध दुआ और ताजा दूध पिला दिया, उस जमाने में पीते थे लोग, अब तो कहते नहीं ही का रही है इसमें से, जब तक बॉयल नहीं करेंगे, अरे ताजा दूध में जो मजा है वो कहां, ही खाती हर चीज में, ही खाती असली घी में ही खाती, नकली आराम से डाल्टा खा रहे, डाल्टा खाने की वजह से ताकत नहीं है, अगर असली घी खाते तो क्या हाल होता। तो फौरन दूध पिया उन्होंने और फिर दुआ दी उसको, और फिर कहा कि देखो तुम जाके ना तुम जाके मौलाना थानवी से बैत हो जाना, हजरत थानवी का नाम लिया, मौलाना अशरफ अली थानवी से बैत हो जाना। तो अब उनको सिर्फ एक नजर पे ये हुआ कि, और फिर वो निकले वहां से, इल्म दीन हासिल किया, आलिम बन गए, फिर आलिम बन के हजरत थानवी को ढूंढते ढूंढते फिर वहां पहुंचे थे। तो जिसको जिस पर अब्दाल की नजर पड़ चुकी हो, आलिम बन चुका हो, और फिर वो इतना इतना ऐसा, फिर उसने देखते ही समझ गया, इन्हीं के बाद भेजा था, एक हफ्ते में हकीम उम्मत ने उनको खिलाफत दे दी, एक हफ्ते में खिलाफत। सूखी लकड़ी जल्दी जलने लगती और गीली लकड़ी सूसा करती, हमें बरसों हो गए अभी तक आदतें खराब हैं, अल्लाह से मांगे या अल्लाह मेरी हालत दुरुस्त फरमा दीजिए, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और मैं इसी हालत में कहीं आपके पास आ जाऊं, कम से कम ये आखिरी दर्जा ये तो मांग सकते हैं, अल्लाह मुझे अपने डिपार्चर से पहले, जब मेरा रवानगी से पहले मुझे अपना ताल्लुक अता फरमा दीजिए और जल्द अता फरमा दीजिए, ताकि ताल्लुक मा अल्लाह के मजे भी तो हम लें, वहीं पहुंचा दिया अल्लाह ताला। वो साख समझते हैं गुनाहों में मजा है, उस शाख समझते हैं, उस शाख का इरशाद है आहों में मजा है, तुम्हें मोबाइल में मजा आ रहा है, ऑल फॉल चीजों में मजा आ रहा है, और इनको अल्लाह अल्लाह इसमें जो आ है इसमें मजा आता है, गुनाह से बचने की जो मशक्कत है इसमें मजा आता है, वाह अल्लाह ताला ने मुझे अपने रास्ते में कबूल फरमाया और गुनाह से बचने की तौफीक, ये नहीं मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल नहीं है, आप आए नहीं है लाए गए हैं। कामिल इलाहाबादी कहते हैं, मैं खाने में मैं कैसे आते नहीं, मैं खाने में लाए जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का मैं खाना भाई, गालिब वाला नहीं, मैं खाने में मैं कश आते नहीं, मैं खाने में लाए जाते हैं, अज खुद नहीं बनते दीवाने, दीवाने बनाए जाते हैं, अज खुद नहीं बनते दीवाने, दीवाने बनाए जाते हैं, और कांटे रहे उल्फत में पहले हर समत बिछाए जाते हैं। नजर की हिफाजत, ये मुजाहिदा ये मुजाहिदा, बाबी से पर्दा साली से पर्दा, कांटे रहे उल्फत में पहले हर समत बिछाए जाते हैं, फिर शौक से उनकी महफिल में दीवाने बुलाए जाते हैं, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। और इस शायर का दूसरा शेर सुने इसी गजल का, कहता है मेरा मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, हाँ हजरत वाला ने क्या बात फरमाई, लब है खंदा जिगर में तेरा दर्द गम, आप जाहिरी हंसी को देखते हैं, लब है खंदा हंसते इसलिए ताकि लोग परेशान ना हो जाएं कि हर वक्त रोते रहते दीन बहुत मुश्किल है, लब है खंदा जिगर में तेरा दर्द गम, तेरे आशिक को लोगों ने समझाए कम, तेरे आशिक को लोगों ने समझाए कम, इसमें भी जो मानी है, तेरे आशिक को लोगों ने कम समझाए और कम लोगों ने आशिक को पहचाना है, तेरे आशिक को लोगों ने समझा है कम, अपनी तरह समझते हैं कि हंसते रहते हैं ये, लेकिन दिल में जो गम है वो कह रहा है ये शायर मुस्तफा जैदी, मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। अल्लाह वालों के हालात पे शेर कह दिए, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं। तो फुस्साक समझते हैं गुनाहों में मजा है, उस शाख का इरशाद है, बच्चा मिट्टी खाता है ना उसको मजा आता, ये छोटे बच्चे हैं इनको धूप में क्रिकेट खेलने में मजा आता, अभी तो मौसम अच्छा हो गया, जब एक महीने पहले शदीद धूप होती जब भी ये खेल रहे होते थे इनको पता ही नहीं चलता धूप, सेंसलेस होते हैं ना बच्चे, वो बस अपने मजे उनका मजा आगे होता है, ये तो बड़े हो रहे हैं और छोटे बच्चों का और हाल। तो बच्चा मिट्टी खाता है बड़े मना करते हैं, देखो ये हमारा दुश्मन है मिट्टी खाने नहीं देता, जिस तरह बच्चा मिट्टी खाता है इसी तरह हम बड़े होके गुनाह करते हैं, हमारा भी ये मिट्टी खाना है। तो फुस्साक कौन है जो गुनाहों की मिट्टी खाते हैं, और शाख कौन है जो अल्लाह के कुर्ब की मिठाइयां खाते हैं, अल्लाह के कुर्ब की मिठाई। फुस्साक समझते हैं गुनाहों में मजा है, उस शाख का इरशाद है आहों में मजा है, और वो मंजिल मकसूद के है खालिक लज्जात, उस मंजिल मकसूद की राहों में मजा है, उस मंजिल मकसूद की राहों में मजा है। आप कलरी चले जाइए और समंदर चले जाइए है ना, करीब जाएंगे, करीब जाते ही आपको ठंडक महसूस होगी, पानी से जो हवा टच होके आ रही है उस रास्ते में भी ठंडक होती है, जन्नत की तरफ हम जा रहे हैं अगर और जो रास्ते उससे हवा आ रही है इस रास्ते में भी मजा है जनाब। ये दिल, बंदे ने अर्ज किया, ये दिल कैफे मंजिल से सरशार है, ये दिल कैफे मंजिल से सरशार है, तेरी राह कितनी मजेदार है, तेरी राह कितनी मजेदार है, ये दिल कैफे मंजिल से सरशार है, तेरी राह कितनी मजेदार है, और जिसे देखो गम का खरीदार है, जिसे देखो गम का खरीदार है, कि उनकी खुशी का बेओपार है, ये उनकी खुशी का बेओपार है, गम क्यों खरीद रहे हैं, जान के गम उठा रहे हैं, कौन सा गम, अल्लाह के रास्ते का गम। एक तरफ गम उनके रास्ते का उठाते जाइए, कोई और शेर नहीं पढ़ा, खुद ही पढ़ लूं क्या करें, टाइम ऐसा हो गया। तायब साहब के अशार हैं, और तायब साहब के ऐसे अशार कम होते हैं इसलिए इसकी कदर करें, उनके अशार जरा ऊंचे लेवल के होते हैं, गाड़ी उर्दू वाले, यहीं पे उन्होंने फरमाया था, लोग कहते बहुत गाड़ी उर्दू होता, जब पतली उर्दू वाले सुन लो। एक तरफ गम उनके रास्ते का उठाते जाइए, दूसरी जानिब खुशी मंजिल की पाते जाइए, इधर गम उठाएंगे इधर दिल में खुशी आएगी, ये खुशी दिमाग वाली नहीं है, दिल की खुशी है, जो खालिक खुशी को राजी करता है खालिक खुशी उसके दिल को खुश कर देता है। एक तरफ गम उनके रास्ते का उठाते जाइए, दूसरी जानिब खुशी मंजिल की पाते जाइए, और घर बचाना है तो दरवाजे पे पहरा दीजिए, चौकीदार वहां नहीं बैठेगा कोने में, यहां बैठेगा ना भाई, घर बचाना है तो दरवाजे पे पहरा दीजिए, दिल बचाना है तो फिर आंखें बचाते जाइए, दिल बचाना है तो फिर नजरें बचाते जाइए। और सुनिए, और सुनिए, चंद दिन रुक जाइए गाने बजाने से यहां, चंद दिन रुक जाइए गाने बजाने से यहां, शौक से जन्नत में फिर गाते बजाते जाइए, शौक से जन्नत में फिर गाते बजाते जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वकौल अल्हम्दुलिल्लाह, क्या गाजा गाता बजाता जाएगा, वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमारा, फिर जन्नत वाले गुरोह दर गुरोह ले जाए जाएंगे इज्जत व इकराम के साथ, जहन्नम वालों क्या कहते हैं हकाया जाएगा, जब चलो उधर बकरियों की तरह जानवर चलो, और जन्नत वालों को इज्जत के साथ ले जाया जाए। وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ, جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے, یہ واو جو ہے اس کا ہے, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, سلامتی ہو تم پر, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, داخل ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ جنت. اب وہ داخل ہوتے کیا کہیں گے, یہ گانا بجانا, وقال الحمد للہ الذی, یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے جس نے ہمیں جنت میں بھی پہنچایا, اور جہاں چاہیں جا, حیث نشا نتبوؤ, اور جہاں چاہیں ہم جا, کیا اللہ تعالیٰ کی کیا کچھ انعامات ملنے والے ہیں, تھوڑے سے مجاہدے پر, رات بھر نہیں جاگنا ہے بھائی, ہم منع کرتے ہیں, رات بھر نہ جاگو, عشاء جماعت سے پڑھو, فجر جماعت سے پڑھو, اگر کبھی آنکھ کھل جائے 4:38 پر, ابھی آج کل چل رہا ہے 4:35 تک نماز پڑھنی چاہیے, ایک دم ایک منٹ تک آخری تک نہیں, 3-4 منٹ پہلے, 4 بجے بھی اٹھ جائیں تو بھی 4-8 رکعت مل جائے گی, نہیں ملے گی بالفرض, کبھی آنکھ کھل جائے, ضروری نہیں ہے, ضروری کیا ہے, عشاء کے بعد پڑھ لیں 4-8 رکعت, عشاء کے بعد پڑھ لیں تاکہ تہجد گزاروں میں شامل ہو, 4-8 نہ صحیح, 2-4 صحیح, اور اس کے بعد اب سردیاں آ رہی ہیں, آگے آپ دیکھیں گے روزانہ وقت بڑھ رہا ہے, فجر لیٹ ہو رہی ہے, 5:45 تک ہم آ گئے, 6:30 تک جاتے ہیں, بعد مدینہ 6:40 تک نماز ہوتی ہے, تو اس وقت میں فجر جو سحر جو ہے وہ 5:57-58 تک جاتی, 5:00, یہ دیکھو سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ, 5:57-58 تک جاتے ہیں, سب طرف نظر ہوتی ہے میری, شاہین جو ہے تیز نگاہ ہوتا ہے, اقبال نے کہا تھا, الحمدللہ اللہ تعالی کا فضل و کرم, اقبال نے کہا ہے, جو کسی نے کہا شاہین شاہین کرتے رہتے ہیں, وہ پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹ, تو کہا کہ شاہین تیز نگاہ ہے اور بلند پرواز ہے اور آشیانہ نہیں بناتا, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا, اقبال کہہ رہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, میرا بھی کوئی آشیانہ نہیں, یہ سب وقف کا گھر ہے بھائی, میرا اپنا کوئی پلاٹ بھی نہیں ہے الحمدللہ, مجھے اس پر کوئی حسرت بھی نہیں, یہ گھر تو ہو جاتا, وہاں کا گھر صحیح ہو جائے سب انشاءاللہ, اور جو جس اللہ نے ہمیں یہ سب دے دیا وہ ہماری اولاد کو بھی دے دے, ساری فکر اسی کی اولاد کو, دنیا میں کیا ہوگا, مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا, ہماری اولاد کا ہوگا, یہ ہونا چاہیے, تو کیا اقبال نے کہ شاہین بلند پرواز ہے, تیز نگاہ ہے, اور مردار نہیں کھاتا, زندہ شکار کرتا ہے, کہیں دیکھے گا گدا مرا پڑا ہے, کوئی مردار نہیں کھائے, خود شکار کرے گا, اور اس کے بعد پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, یہ کیا ہے, وہ چھوڑ دیا شکار کو, اب وہ تو آہستہ جا رہا ہے, وہ تیزی سے جھپٹتا ہے اس کو دوبارہ, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, اتنا گرم لہو والا ہے, اس لیے اس کو موضوع بنایا, موضوع بنا, بہرحال یہ تو اس لیے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو بےچارہ بیٹھا تو اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اور وہ بےچارہ کسی اور دنیا میں چلا گیا, فرمایا آنکھیں بند کر کے دیکھیے کتنا عمدہ ملفوظ ہے, آنکھیں بند کرنے سے آدمی سونے والوں کی شکل بناتا ہے, اور جیسی شکل ہوتی ہے ویسی روح آ جاتی, تھوڑے دن میں نیند صاحبہ بھی آ جائیں گی اور آپ اس دنیا سے کوچ کر کے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے, خراٹا لے کے رسید بھی بھیج دیں گے, بعض لوگ بیٹھے بیٹھے بھی سونے لگتے ہیں, کل ایک صاحب لیاقت آباد کے بیان میں بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا تھا, ان کی ہلکی سی آواز خراٹے کی آ رہی تھی, پھر میں نے ان کو اٹھوایا, بھائی کیا ہو گیا بھائی, کچھ تو ہمارا خیال کرو, ہم سرجانی ٹاؤن سے آئے, تو یہ بات, اب یہ بات یاد رکھیں, تو صحیح ہے نا کہ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی, تو جب آنکھ بند کرنے سے سونے والوں کی شکل بنانے سے نیند آ جاتی ہے, تو اللہ والوں کی شکل بنانے سے اللہ والا بھی بن جائے گا آدمی, جب آدمی باشرا ہو جاتا ہے تو اللہ والا دل بھی اس کا اللہ والا بن جاتا ہے, اس لیے دیر نہ کریں بلا وجہ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں, کہ ظاہر تو منا لو یہ روزانہ کا گناہ ہے, ایک بد نگاہی آدمی کتنی دیر کرے گا, چلو موبائل پہ بھی لگائے لیپ ٹاپ پہ بھی, کتنی دیر, نیند تو آئے گی, آفس جانا ہے, کھانا کھانا ہے, بہرحال اٹھے گا, لیکن داڑھی مڈانے اور کٹانے گڑا تو روزانہ ہو رہا ہے, ایک مٹھی سے کم کرانا, اس بات کو آگے پہنچائیں, ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو جانتا ہے اس کو آگے پہنچائے, इसको आगे पहुंचा। वो शेर अभी तक बाकी है, देखें। फसाख समझते हैं गुनाहों में मजा है, उस शाख का इरशाद है आहों में मजा है, वो मंजिल मकसूद के है खालिक लज्जात। देखिए कैसी लज्जतें उसने रखी, मुर्ग बिरयानी खाए, कौरमा बिरयानी, जो को भी कैसी कैसी लज्जत। अच्छा उस लज्जत एक उसमें है, एक लज्जत लज्जत काम और दहन यहां रख दी। कितनी दफा ऐसा होता है कि आदमी नजले की वजह से लज्जत नहीं आती, मिट्टी लगता है खा रहा है, तो पता चला दोनों तरफ लज्जत चखने की जो यहां कुदरत अल्लाह ने रखी है, ये उंगली से नहीं, आप सालन में उंगली लगाए ये तो कह सकते हैं गर्म या ठंडा है, लज्जत कैसी है नहीं बता सकते, बता सकते हैं, चखना पड़ता है लज्जत, ये बताएगा जबान, ये लज्जत है काम और दहन इसको कहते। तो जब यहां लज्जत नहीं आ रही है तो उसकी लज्जत बेकार है उसके लिए, दोनों तरफ लज्जत के तार यहां है, नीचे नहीं है, पेट में जाने के बाद उतर गए घाटी हो गए माटी, जब घाटी से उतर गया गले से अलग से सब मिट्टी हो गई। तो अल्लाह ये सब लज्जतें अल्लाह ताला ने रखी है। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब का इरशाद मुफ्ती तकी साहब ने नकल किया कि घर जाते हो एक लम्हा ठहरो, ऑफिस से घर गए ना दो घंटा मुराकबा नहीं करना है, एक लम्हा दरवाजे पे खड़े होकर, जब दरवाजा खुल रहा है मैं अपने घर जा रहा हूं और या अल्लाह ये मोहब्बत करने वाली बीवी, ये प्यारे प्यारे बच्चे आपने अता फरमाए, इनसे प्यार करने का हुक्म भी आपने दिया है, मैं इसलिए इनसे प्यार कर रहा हूं, बच्चों को प्यार कर रहा है, ये प्यार करना भी सुन्नत बन गया, क्योंकि आपने बच्चों को नवासों को प्यार किया, ये प्यार करना भी सुन्नत बन गया। बाहर जो नजर की हिफाजत करके जाएगा वो बीवी को भी अच्छी नजर से देखेगा, अच्छी नजर से मुराद बीवी को बीवी की नजर से देखेगा, तो और जो बाहर बदनिगाही करके जाएगा उसको बीवी ऐसी नजर आएगी दो नंबर काली की लोटी, अम्मा कहां से उठा के ले आई पता नहीं, हमारी किस्मत खराब थी, क्योंकि बाहर जो बाहर पेट भर के जाएगा उसको घर की चटनी रोटी क्या लगेगी, और जो बाहर से भूखा जाएगा फिर जो भी है ले आओ, बहुत मजा आ रहा है ले आओ। तो जो बदनिगाही नहीं, हजरत वाला ने फरमाया जो बदनिगाही नहीं करता अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, और लड़ाई की वजह यह है कि 10 औरतों को देखता है वो, कितने से चक्कर चला रहा है, हर और उसको हर दूसरी उसको पसंद आती, कल को अगर वो बीवी बन वो भी ऐसी हो जाएगी उसके लिए। कुल्लू जदीद लजीज, इंसानी फितरत ये कि हर जदीद नई चीज उसको अच्छी लगती है, इसीलिए साली से पे उसकी नजर होती है बीवी से हटा के बताए, और वो बीवी साहिबा भी वो नहीं करती, चलो आ गई बहन आ गई पर्दा कराओ भाई उसको, वरना खुदा ना खासा ऐसा हुआ है, हजरत वाला ने फरमाया और मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने वाकया सुनाया, वो एक साहब थे बाशरा थे और कुछ कामों में लगे हुए भी थे, अचानक उनको साली से पर्दा नहीं करते थे, लिहाजा बीवी को छोड़ा तलाक दी रातों रात और साली को लेके भाग गए, लोगों की अमानतें भी उनके पास थी वो भी लेके भाग गए। पता चला कि ये गुनाह ऐसा है, बाद दफा आदमी मजबूर हो जाता है, ऐसा काम करता है कि जग हंसाई होती, अब कितने लोग उससे बताई बदजन हुए कि एक देखो बज़ाहिर बाशरा आदमी था हमारे पैसे भी लेके भागा और किसी की इज्जत से भी खेल रहा है, क्यों हुआ, बेपर्दगी की नहुसत की वजह से। एक वो शेर बाकी है भी, अब बस हमारा तो वैसे स्टॉप करीब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, क्या क्या सुनाएं आप, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कई मजलिसें होती हैं फजर के बाद असर के बाद, एक ही दफा एक ही वक्त में बयान ज्यादा सुनना भी गिरा होता है, ज्यादा बोलना भी मुश्किल होता है ना, आदमी मुख्तलिफ मजलिस में बैठे मुख्तलिफ चीजें पता चलती हैं, हर मौजू अलग अलग होता है, कोई आदमी ऐसा आ जाता है उसकी जरूरत के लिए उसका बयान होता है। तो वो मंजिल मकसूद की है खालिक लज्जात, उस मंजिल मकसूद की राहों में मजा है, और लागोश विलायत के तलज्ज की नहीं मिसल। क्या करें लफ्ज यहां लाना पड़ा गाढ़ा, तलज्ज क्या लज्जत से कोई मुश्किल थोड़ी, आगोश विलायत औलिया अल्लाह के गोद में पलना, उनकी सोहबतों में रहना, आगोश विलायत के तलज्ज की नहीं मिसल, मैं मानता हूं बीवी की बाहों में मजा है, तुम्हें बस यही नजर आता है। हजरत वाला के पास एक साहब आते थे और कहा हजरत मेरी बीवी बहुत हसीन है, लेकिन मैं आप अफ्रीका में या कहीं और यूरोप में थे हजरत, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आपके जब से आप आए हुए हैं हमारे मुल्क में मैं उसको छोड़ के आपके पास आ जाता हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैं कैसे छोड़ के आ रहा हूं। हजरत फरमाया मैं तुम्हें बताऊं, राज आउट किया हजरत ने, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी बीवी के पास हुस्न है और यहां खालिक हुस्न है, अल्लाह वालों के पास खालिक हुस्न होता है, वो हुसन मुर्दार है, और ये हुसन अल्लाह का हुसन जो है गया, हुसन खूबान है दिल खाह का, दो चार छह बच्चे हुए वो नानी अम्मा बन गई, नजर भी कम आता, चश्मा लगाया हुआ है, आंखों आंखें खराब हो गई। गया हुसन खूबान है दिल खाह का, गौर करें क्या है दिल खाह का क्या मतलब, जिस पे लोगों का दिल आता था, दिल चाहता था उसको देखने का, खूबान बहुत अच्छे, खूबानी नहीं है, बहुत खूबसूरत। गया हुसन खूबान है दिल खाह का, हमेशा रहे नाम अल्लाह का। गया हुसन खूबान है दिल खाह का, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। क्या है कदे खम गुश्ता झुक कर पाओ पर ए राज कहता है, हमारे अब्बा जान का शेर है रामुल्ला ताला उनकी मगफिरत में, कभी कदे खम गुश्ता, कौन समझेगा उस जमाने की जबान, हमारे वाले साहब की उर्दू बहुत अच्छी थी, ऐसे ही थोड़ी असर जौनपुरी पैदा हुआ है। कदे खम गुश्ता झुक कर पाओ पर ए राज कहता है, जवानी रूठी जाती है किसे भेजू मनाने, रूठी जा रही है हमसे भी रूठ रही है, जवानी खत्म हो गई, 50 साल के बाद जवानी रहती गई, बुढ़ापा आ गया, मानना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया, लोग मानते नहीं हम भी जवान, ये ठीक है बुढ़ा समझे नहीं अपने आप को, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले और अल्लाह से मांगे, या अल्लाह जो भी जवानी बाकी है आप इससे दीन का काम ले लीजिए, मैं इसीलिए मांगता हूं कि अल्लाह इससे आप हज भी अता फरमा दीजिए, क्योंकि ज्यादा बुढ़ा होकर आदमी हज करना मुश्किल होता है, और जो काम है दीन के ले लीजिए, वरना अब हजरत वाला जितने बूढ़े हो गए, मुझे याद है दो आदमी आए हजरत वाला बीमार थे, हजरत बैत होने आए पंजाब से, क्या आह खेच के फरमाया, अब आए हो जब ट्रेन छूटने लगी है, अब आए हो जब ट्रेन छूटने लगी है, मतलब क्या अब तो हमारी गाड़ी स्टेशन के करीब है, हमें दुनिया से जाने का वक्त हो गया, जब अल्लाह वाले जवान होते हैं लोग उनकी कदर नहीं करते, जब बूढ़े हो जाते हैं मरने के करीब तो फिर जाके रश लगाते हैं, अब उनके अंदर दम नहीं होता, वो ज्यादा बयान ही नहीं कर सकते, हजरत वाला किसी ने ज़ियारत करते थे बैठे हुए, बयान कोई और कर रहा होता, लेकिन ज़ियारत भी क्या कम होती थी, अल्लाह वालों को देखना भी इबादत है, उनकी सोहबत में बैठना, बर्फ तकरीर नहीं करती ठंडक पहुंचाती है, आग तकरीर नहीं करती गर्मी पहुंचाती, तकरीर के मोहताज नहीं होते अल्लाह वाले। तो एक बात बतानी थी खास, दुआ मांगा करें, ये मैं पहले भी कहा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस पर हजरत वाला का मलफूज सुन, दुआ खूब मांगे, हर नमाज के बाद 5-7 मिनट मांगे, बहुत ज्यादा, जब हम 5-7 कहेंगे तो आप 3 मिनट तक तो आएंगे ना कम, एक डॉक्टर ने कहा था दांत के डॉक्टर, 5 मिनट ब्रश किया करो, मैंने जब घड़ी देखा तो 1 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 5 मिनट कैसे ब्रश करे आदमी, वो किसी ने इसलिए कहा कि 2 मिनट तक तो आएगा 3 मिनट तक, ताकि ज्यादा ब्रश करे तो दांत में कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं 5-7-10 मिनट, लेकिन मैं बता रहा हूं आप शुरू करें, खुद दिल लगेगा और फिर 10 मिनट में भी आपका दिल नहीं चाहेगा खत्म करने को, अल्लाह से मांगना इतना महबूब अमल है। तो अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुल मुलहिन बिद्दुआ, अल्लाह ताला दुआ में इल्हाउ जारी बार बार मांगने लग लिपट के मांगने को पसंद करते, या अल्लाह मुझे दे दीजिए, या अल्लाह मेरे ऊपर फजल फरमा दीजिए, या अल्लाह मेरे रोजगार में बरकत, मेरे औलाद में बरकत, दीनदारी सब चीज मांगे, हिदायत तकवा सब चीज मांगे, और मांगता रहे बार बार मांगे, फिर क्या होगा आप देखिए, सुने हजरत का मलफूज सुने और फिर देखें अल्लाह वालों को अल्लाह ताला कैसी आसमान वाली पिलाता है। हजरत ने खुद फरमाया था मेरे पीने को दोस्तों सुन लो आसमानों से मैं उतरती है, मेरे पीने को दोस्तों सुन लो आसमानों से शराब आती है अल्लाह की मोहब्बत की शराब। तो फरमाया जब उसकी ख्वाहिश जब पूरी होगी, जब होगी दुआ ऊपर गई कबूल होगी, फिर जहूर होगा। याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल रोते रहे, 40 साल बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, बताइए हम कहते हैं हमारी दुआ 40 दिन के अंदर जल्दी होना चाहिए, अर्जेंट सर्विस होनी चाहिए, अरे भाई वक्त लगता है, बाद दफा नहीं होता, वहां जाके मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जब कबूल और जहूर होगा, जब होगा अल्लाह की मोहब्बत तो फौरन मिल जाती है, इन अल्लाह युहिब्बु, अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं उससे, उस मांगने वाले से मोहब्बत नकद मिल गई, चीज जब मिलेगी, चीज से बढ़कर अल्लाह की जात नहीं है, बताइए चीज क्या चीज। हजरत अली फरमाते हैं जब तुमने 2 रकत पढ़ी और खूब मांगा, और जो चीज मिली ना मिली ये कम तौफीक मिल गई कि 2 रकत पढ़ के मांगने की तौफीक हो गई, सबसे बड़ा मिलना तो यही है कि अल्लाह मिल गया, ताल्लुक में अल्लाह मिल गया। अद्दुआ नबवत मुरादे आशिका, जो सुखन गुफ्तन बहा शीरी दहा। दुआ आशिकों की मुराद पूरी होने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो या अल्लाह करके मजे लेते हैं। अल्लाह आपका नाम कितना मीठा नाम। अद दुआ नबवत मुराद आशिका। हाँ फिर रोते भी अल्लाह है, दरेगा अश्के मन दरिया बुदे ता निसारे दिल भरे जोबा शुदे। जैसे मैंने कहा नींद नाक बंद करने से सोने वालों की शक्ल होती, इधर रोने वालों की भी शक्ल बना ले। रोना नहीं आता ना, ये गुनाहों की कसावत है, ज्यादा गुनाह की वजह से दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह वालों क्यों रोना आता है, तन्हाई में होते उनको रोना आ जाता है, थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं कब्र हशर को रोना आ जाता है। बाजों का दिल नरम होता इसके साथ भी आ जाता है, ये जरूरी रोना ही आना कोई वलायत की अलामत नहीं है, लेकिन अक्सर औलिया अल्लाह को रोना जल्दी आता है। तो अगर हमें रोना नहीं आ रहा है तो रोने वालों की शक्ल बना ले, ये दुआ मांगने में, या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला देख रहे हैं इसको, आर्टिफिशियल है ये। आप हारून जाइए, हैदरी जाइए, और ये पौधा कितने का है, ये 2500 का है, ये कितने का है, सब प्लास्टिक के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, प्लास्टिक के फूलों से। उसमें वो कह रहे 3000 का है, ये 5000 का है, जितना अच्छा लेंगे बड़ा लेंगे गुलदस्ता इतना महंगा। और आप यहां चले जाइए इधर कहीं भी अच्छे नर्सरी में, ये पौधा कितने का, 200 का। ये कितने का, पहले 2500-3000 का मिलता था, अब वो 100-150 का हो गया, और अच्छा वाला 400 का 500। असली वाले सस्ते हैं, नकली वाले महंगे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला भी इस रोने को, इस मुंह बनाने को पसंद फरमा लेते, इस आर्टिफिशियल रोने को बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब। तमाशाए अहले करम देखते, तमाशाए अहले करम देखते। हाफिज जीशान साहब आप आ जाइए, मैं थक रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा जायका भी बदल जाए। मेरे ही अशार हैं, कुछ बयान मंजूम होता है कुछ मंसूर होता है। मंसूर नसर से है, स्वाद से नहीं है, मदद वाला नहीं है। मंसूर, दुर्रे मंसूर का क्या मतलब है, बिखरे मोती। लोग मतलब नहीं समझते, दुर्रे मंसूर में लिखा है, बिखरे मोती उर्दू में है ना किताब, दुर्रे मंसूर। दुर का मतलब मोती और मंसूर का मतलब नसर वाले मोती, यानी जुमले जुमले मलफूजात वगैरह। आइए, तो ये भी मलफूजात हैं अल्लाह वालों के, और उसमें बंदे ने इसको बयान कर दिया।
यह शायर मेरे प्यारे शेख शायर इस्लाम हजरत मौलाना शाहीन इकबाल असर जौनपुरी साहब दामद बरकातुहुम अलिया के हैं। दो चार दिन की बात है, कोठी बंगले बेहतरी दो चार दिन की बात है, क्या मका कैसे मकी दो चार दिन की बात है, कोठी बंगले बेहतरी दो चार दिन की बात है, क्या मका कैसे मकी दो चार दिन की बात है। एक दिन आकर खिजा वीरान कर देगी चमन, एक दिन आकर खिजा वीरान कर देगी चमन, सर्व सुंबुल यास्मी दो चार दिन की बात है, सर्व सुंबुल यास्मी दो चार दिन की बात है, क्या मका कैसे मकी दो चार दिन की बात है। ए किसान सुस्त उठ खेती लगा सब्जा उगा, ए किसान सुस्त उठ खेती लगा सब्जा उगा, पास तेरे ये जमी दो चार दिन की बात है, पास तेरे ये जमी दो चार दिन की बात है। زوم آئین شہر حضرت, ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے, وفر اللہ وفر شوارب, داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو گال زمین کے طور پہ مدہ فرمایا, اس پہ آپ علیہ السلام کی سنت کا باغ ہم اگا لیں, کیونکہ یہ زمین واقعی دو چار دن کی بات ہے. جس حال میں انسان مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اگر داڑھی ہوگی تو انشاءاللہ وہاں بھی داڑھی موجود رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ایک دن یہ صورتیں تبدیل ہوگی بال یقین, ایک دن یہ صورتیں تبدیل ہوگی بال یقین, لاکھ کہلاؤ حسین دو چار دن کی بات ہے, لاکھ کہلاؤ حسین دو چار دن کی بات ہے.
اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, میرے حضرت کے شعر ہے, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر داڑھی کاٹ کر کوئی خود کو حسین سمجھتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں پھر تو اس کے ایمان کے بھی لال ہیں, کیونکہ اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت اور حسین چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے.
میں نے مانا ہے مشقت راہ حق میں پر اثر,
یہ حضرت کا مقطع ہے, یہ اس سے پہلے ایک شعر ہے.
آج تک کوئی نہیں جو موت میں کرتا حشر, آج تک کوئی نہیں جو موت میں کرتا حشر, زندگانی بال یقین دو چار دن کی بات ہے, زندگانی بال یقین دو چار دن کی بات ہے. کیا مکاں کیسے مکیں دو چار دن کی بات ہے.
حضرت کا یہ مقطع اور خوبصورت شعر.
میں نے مانا ہے مشقت راہ حق میں پر اثر, میں نے مانا ہے مشقت راہ حق میں پر اثر, کچھ زیادہ تو نہیں دو چار دن کی بات ہے, کچھ زیادہ تو نہیں دو چار دن کی بات ہے.
آنے والی لامحدود زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی 100 سالہ زندگی بھی دو چار دن ہی کی بات ہے.
میں نے مانا ہے مشقت راہ حق میں پر اثر, کچھ زیادہ تو نہیں دو چار دن کی بات ہے, کوٹھی بنگلے بہترین دو چار دن کی بات ہے, کیا مکاں کیسے مکیں دو چار دن کی بات ہے.
جزاکم اللہ. حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ جو اکثر کتابوں میں جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے بس وہ سنا کے انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. یہ بہت آسان ہے بات, اس کے لیے ایک لطیفہ پہلے ڈاکٹر خلیل صاحب کا سن لیں. ڈاکٹر خلیل صاحب رحم اللہ تعالیٰ بہت ہمارا ساتھ رہا, الہ آباد کے تھے, اہل زبان تھے اور سوئی گیس میں ڈپٹی مینیجر تھے. آج سے 25 سال پہلے ان کی تنخواہ 1,20,000 روپے تھی اس زمانے میں, اب تو کچھ بھی نہیں 1,20,000 اس زمانے میں, اور کہتے تھے 10,000 تو ٹیکس کٹ جاتا ہے اس میں سے. تو حضرت خاص طور پر ان سے پوچھتے تھے کتنی تنخواہ ہے تاکہ بتائیں کتنے بڑے افسر ہیں یہ. لیکن حضرت کے سامنے ایسے رہتے تھے بالکل مٹے ہوئے. تو انہوں نے سنایا کہ ہندوستان میں حضرت کو کبھی کبھی سناتے تھے حضرت کو ہنسانے کے لیے دل بہلانے کے لیے کہ ہندوستان میں ایک آدمی جو ہے اس نے میلہ لگا دیا نا, یہ سنو بھائی یہ بہت ضروری بات بتا رہا ہوں, کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا, غور سے سنو کل کیا ہوگا, میں تمہیں بتا رہا ہوں کل کیا ہوگا. اچھا بتاؤ بھائی, لوگ جیسے کام پہ جاتے ہوئے رک جاتے ہیں, تو زمانے میں زیادہ تھا ایسا رجحان, لوگ جمع ہو گئے ایسے کیسے بتاؤں, ایک ایک روپیہ سب دو پھر بتاؤں گا کل کیا ہوگا. اچھا اب سب نے دے دیا ایک ایک روپیہ, چلو بھی تجسس تھا, کل کیا ہوگا, آج ہفتہ ہے کل اتوار ہوگا اور کیا ہوگا, ان لوگوں کو اتنا پتا نہیں کل کیا ہوگا, کل اتوار ہے. تو یہ بظاہر سیدھی بات ہے نا, اس نے تو بےخوب بنایا. تو آکی ابو الامت فرماتے وہ ذرا سی بات, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے طریقت اور سلوک کا اللہ کے راستے کا, وہ یہ کہ جس طاعت میں مشقت ہو, جس طاعت میں سستی ہو مشقت ہو, اس کو بتکلف بجا لائے. فجر کی نماز میں مشقت ہوتی ہے بتکلف, چاہے آنکھ ملتا ہوا آئے نیند آ رہی آئے, بس جسم کو لانا ہے, ہمیں جسم کو لانا ہے, یہ نہیں دل نہیں چاہ رہا, دل نہیں چاہے گا زیادہ ثواب ملے گا, ذکر کا دل نہیں چاہ رہا زیادہ ثواب. جس طاعت میں سستی معلوم ہو ہمت کر کے اس کو بجا لائے, اور جس گناہ سے بچنے میں مشقت اور تکلیف ہو اللہ کے لیے تکلیف اٹھا لے, بس اللہ والا بن جائے گا. بظاہر کو کیسی کتنا سادہ سا ملفوظ ہے, یہی ہے طریقہ, کرنے کام کرنے سے ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات, ایک صاحب ادھر بھی آ کے پیر دبا رہے ہیں, فجر میں بھی آ گئے بعد دفعہ, دیکھا تین چار دن نہیں آیا, میں نے مجھے کہاں دے, کہہ رہے سستی ہو گئی نماز بھی نہیں پڑی گئی. کیسے ہوتا ہے بھائی, اس کو تلون مزاجی کہتے ہیں, ایک دم رنگ بدل جانا گرگٹ کی طرح, ابھی تو بیٹھے ہوئے شیخ کے پیر دبا رہے ابھی نماز کی توفیق نہیں, یہ کیا ہے, سستی کا علاج چستی ہے. تو کہنا اپنا جسم کو پابند کرنا پڑے گا, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے, میں نہیں سویا رہ سکتا, مجھے جانا ہے اللہ کے لیے. کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں, تعویذوں سے نہیں ہوتے. اس لیے یہ عجیب معاملہ ہے, یہ کہیں تو اتنا اونچا اڑ رہے ہیں کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں فجر کے بعد, اور کبھی ایسا اور نماز کی بھی توفیق نہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, سستی ہے, سستی کا علاج چستی ہے. کرنا ہے تو کرنا ہے, فرض ہے تو فرض. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت